विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
एवरीबॉडी
हरे कृष्णा हरे Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama
Hare Krishna
What?
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, 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 Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Yeah.
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
Thank you.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna, Krishna.
పావన హరినామ సంకీర్తనకి అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి దంతరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి గౌర ప్రేమానంది
హరి హరి
ఓం. అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుఃన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశ తారిణే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఆప్ సబ్కో స్వాగత్ కర్తే హై ఇస్ భాగవత్ కే దశమ స్కంద కే భగవాన్ కే వివిధ అసురం కే బధ కీ లీలా కే సత్రం మే. ఇన్ సత్రం మే అనేక అసురం కే బారే మే హమ్ పఢతే ఆయే హై. లేకిన్ పిచ్లే దిన్ జో ఆప్నే కథా సునా బ్రహ్మా బ్రహ్మ విమోహన్ లీలా. బ్రహ్మతో సబ్ దేవతాం కే భీ నేతా హై, భగవాన్ కే సుపుత్ర హై, జరూర్ అసుర్ నహీ హై, ఆత్మజ హై. భగవాన్ కే పద్మజా నామ సే పుకారే జాతే హై, జో పద్మ మే జిన్కా జనమ హోతా హై, జిన్కా శరీర బుద్ధి సే బనాయా హువా హై, జో చతుర్ముఖ వాలే హై. హమ్ లోగోం కా సిర్ఫ్ ఏక్ సర్ హై, ఉన్కా చార్ సర్ హై, మత్లబ్ ఉన్కా బుద్ధి భీ బహుత్ జ్యాదా హై. లేకిన్ ఉన్కే లీలా సే ఏక్ మహత్వపూర్ణ సీఖ హమ్నే సీఖా కి అప్నే బుద్ధి కా ప్రయోగ కర్కే భగవాన్ కృష్ణ కో మోహిత్ కర్నే కే లియే ఉన్హోనే జో యత్న కియా ఉస్మే విఫల్ హో చుకే వో. ఔర్ భగవాన్ కే నికట్ పార్షద్ జో బచడే గాయ్ ఇన్కో బచడే ఔర్ గోప బాల్ ఇన్కో ఏ గుఫా మే చుపా కర్ రఖ కర్ కృష్ణ కో భీ విస్మిత కర్నే కే లియే ప్రయత్న కియా ఉన్హోనే. ఏవం ఏ ఐసా బతాయా గయా, ఏవం సమ్మోహయన్ విష్ణుం విమోహం విశ్వమోహనం స్వయైవ మాయయా అజోపి స్వయమేవ విమోహితాః. సుందర శ్లోక హై. బతాతే హై ఏవం ఏవం సమ్మోహయన్ విష్ణుం, జో భగవాన్ కృష్ణ హై క్యో నామ విష్ణు ఇస్తమాల్ కియా హై, ఉన్కో సాధారణ గోపబాల్ మత్ సమజో, వో సాక్షాత్ విష్ణు హై. ఇస్ తరహ బతాయా గయా హై ఏవం సమ్మోహయన్ విష్ణుం. విమోహం కా మత్లబ్ హై కబ్బీ భీ కృష్ణ కో కోయి భీ మోహిత్ నహీ కర్ సక్తా, వో సదా నిత్య నిరంతర కాల్ కే లియే భగవాన్ హై, వో అనాది కాల్ సే భగవాన్ హై, అనంత కాల్ తక్ భగవాన్ రహెంగే కృష్ణ, కోయి ఉన్కో మోహ మే నహీ పడ మోహ మే నహీ డాల్ సక్తా, కిసి భీ తరహ కా మాయా ఉన్కో పకడ నహీ సక్తా హై. సిర్ఫ్ మూర్ఖ లోగ్ ఇస్ దునియా మే సోచతే హై కి భగవాన్ నే 16,108 రానియో సే వివాహ కర్కే ద్వారకా మే రహే, శాయద్ ఇతనే కామక్ హై కి ఇతనే రానియో సే వివాహ కియా, ఐసే మూర్ఖ లోగ్ సోచతే హై. లేకిన్ భాగవత్ కే అందర్ ఆప్ పడేంగే ఏక్ సుందర శ్లోక హై జిస్మే బతాయా గయా హై ఇస్ తరహ, యస్యేంద్రియం విమతితుం కుహకై నశేకుః. బతాయా గయా కి వో రానియో కి ఖూబ్సూరతి, రానియో కే అచ్చే साड़ी और आभूषणों से सजावट, उनकी मुस्कान, उनकी तिरछी नजर इत्यादि इत्यादि से रानियां उनको आकर्षित नहीं कर पाई। यस्य इंद्रियम विमति तुम कुह के नाशे कुहू, ऐसे बताया गया, कर नहीं पाई वो। क्यों? इतने रानियां खूबसूरत रहे आकर्षित नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है मदन मोहन, मदन को भी मोहित करने वाले होते हैं वो ना? और हमेशा विशुद्ध सत्व में एक परिशुद्ध अवस्था में रहते हैं भगवान, उनके मन में लेश मात्र भी काम नहीं रहता। इसके विरुद्ध वो प्रेम के भंडार हैं, आनंद घन हैं, और अपने सब भक्तों के भी हृदय को इतने प्रेम से भर देते हैं, भक्त लोग भी काम वासना के ऊपर थूकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं भगवान, लेकिन भगवान द्वारका में भी एक चीज से आकर्षित होते थे, क्या है वो? सेवा भाव से। किसी के अंदर भी सेवा भाव हो वो आकर्षित कर देता था। जैसे रानियों के अंदर सेवा भाव था, उनको प्रसाद परोसती थी, खुद चामर डुलाती थी, उनकी सेवा भाव से प्रसन्न हुए भगवान। इस तरह वृंदावन में भी बछड़े हो, गाय हो, हिरण हो, मोर हो, पंछी हो, बंदर हो, गोप हो, गोपियां हो, नंद बाबा यशोदा हो, सबकी सेवा भाव भगवान को आकर्षित करता है। उनके हृदय में जो प्रेमा भक्ति है वो एकमात्र चीज है उनको आकर्षित कर सकता है। बाकी कुछ भी चीज इस दुनिया में उस दुनिया में उनको मोहित नहीं कर सकता। इसलिए भगवान को ऐसे परिस्थिति में डालना चाहते थे ब्रह्मा जी कि भगवान, ब्रह्मा ने सोचा कि भगवान ने अगासुर के साथ कुछ अद्भुत लीला किया, सब देवताओं को स्मित किया, इतना तक कि देवता फूल की वर्षा किया, डमरू बजाने लगे इत्यादि, है ना? ठीक, हम भी इससे भी ज्यादा हम विस्मय करने वाले कुछ लीला करेंगे, ऐसे ब्रह्मा जी सोच कर इस तरह की लीला किया। लेकिन स्वयमेव विमोहिता, ब्रह्मा खुद ही मोहित हो गए, क्योंकि भगवान अपने आप को विस्तरित करके इतने गोप इतने बछड़े एक समान बनाकर एक साल के लिए ऐसे बिता दिया। अभी दो सेट हो गए, एक भगवान के साथ एक गुफा में भी है, तो तब ब्रह्मा समझ गए मेरे हाथ से बड़ा गलती हो गया है। भगवान मेरे गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनके साथ इस तरह का बुरा व्यवहार किया मैंने, उनको गलत समझ बैठा। तो ऐश्वर्य प्रधान ज्ञान ब्रह्मा के पास होता है भगवान के संबंध में। इसके कारण जो वृंदावन के भक्तों की जो माधुर्य भक्ति को समझना मुश्किल है। जो लोग के पास ऐश्वर्य प्रधान का मतलब क्या है? भगवान के वैकुंठ स्वरूप जिसमें वो स्वामी प्रभु के भूमिका निभाते हैं, उस रूप में शिवजी ब्रह्मा जी उनको हमेशा देखते हैं। उसके बाद वृंदावन लीला में अगर प्रवेश करेंगे वो लोग, इनको चक्कर आएगा, क्योंकि वृंदावन में भगवान अपने ऐश्वर्य की प्रकटीकरण कभी नहीं करते, इसके एकदम विरुद्ध। ये एक नन्हे मुन्ने बच्चे बनते हैं यशोदा के गोद में, गोपियों के गोद में, और यशोदा की सखियां उनको कठपुतली बनाकर नचाती है। इस तरह भगवान गोप बालकों के मित्र बनकर जंगल में खेल कूद में समय बिताते हैं। भगवान के कंधे के ऊपर भी गोप बाल चढ़ जाते हैं, और क्योंकि गाय बछड़े चप्पल नहीं पहनते, भगवान खुद भी चप्पल नहीं पहनते वृंदावन में। इस तरह भगवान ऐसे अद्भुत लीला करते हैं वृंदावन में, उसको समझना मुश्किल होगा ब्रह्मा जैसे देवताओं को जो ऐश्वर्य भाव ऐश्वर्य दृष्टिकोण से भगवान को देखते हैं। जैसे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को अनेक MLA MP लोग देखते हैं, सलाम मारते हैं उनको, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन अगर MLA MP हमारे प्रधानमंत्री के घर में चले जाएंगे, वो माँ कभी कभी माँ प्रधानमंत्री को डांट रही है, अरे 1 बजे का भोजन तुम 4 बजे खाते हो, उनके कान पकड़कर घुमा रही है, तो ये लोग बोलेंगे ये तो प्रधानमंत्री है, आप क्या क्या कर रहे हैं। वो बोलेगी अरे प्रधानमंत्री तुमको प्रधानमंत्री, मेरे लिए नहीं, मेरा बेटा है वो। इस तरह वृंदावन में अगर जाकर ये लोग देखेंगे, ये लोग प्रधानमंत्री के घर में जाकर देखेंगे, उनको चक्कर आएगा। ऐसे ही चक्कर आ गया ब्रह्मा जी को, समझ में नहीं आया उनको इन लीलाओं को देखकर। तब आप इधर देख रहे हैं ब्रह्मा जी झुक रहे हैं, एक पूरा अध्याय है 14वां अध्याय ब्रह्मा के, सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ 5-10 मिनट के लिए कुछ प्रार्थनाओं को पढ़कर हम धेनुकासुर की वध की कथा में प्रवेश करने वाले हैं आज। तो ऐसे अनेक श्लोक हैं, यही श्लोक से भगवान कृष्ण की गुणगान करते हैं अभी उनकी सुंदर रूप देकर। नवमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्चलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पशुप का मतलब है जो गायों के स्वामी जो नंद बाबा हैं उनके सुपुत्र है अंगज, उनके सुपुत्र कृष्ण जो होते हैं मृदुपदे, उनके बहुत कोमल श्रीचरण हैं और वो लक्ष्मी संपन्न हैं और नवमीड्यते उनके श्रीचरणों में मैं सर झुकता हूँ। हब्र वपुषे इसका मतलब है जैसे बादल जलधर होता है उसके समान इनकी नीलिमा है उनके शरीर में। थड़िदम्बर आया उनके पीतांबर चमक रहा है। गुंजावतम स गुंज माला पहना है, गुंज का जो कुंडल पहना है। परिपिच्छ लसन मुखा है उनके गुंगराले बालों के ऊपर एक मोर पंख है और लसन मुखा है उनके चेहरा चमक रहा है बहुत सुंदर रूप से। वन्य सृजे विविध जंगल के फूलों के द्वारा पत्तों के द्वारा गोप बालकों ने इनको सजाया है ऐसे वन्य सजे और हाथ में कवल लेकर और एक ओर उनका ब्यूगल है दूसरी ओर उनका मुरली है उसको बांध लिया है कमर में और ऐसे त्रिभंग ललित में खड़े होकर भगवान दर्शन दे रहे हैं आप देख रहे हैं। तो ये सुंदर कृष्ण की रूप का वर्णन करते हैं, ये रूप ध्यानम करते हैं कौन ब्रह्मा जी का सुंदर श्लोक है। ऐसे उनको पूजा करते हैं उनको ब्रह्मा जी अभी तो बोलते हैं कि आप एकमात्र पूज्य भगवान हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और इस तरह वो स्तुति करते हैं उनके मुखमंडल को देखकर। और भगवान ने जब उनकी प्रार्थना सुना भगवान ने क्या बोला देखिए, भगवान ने बोला कि हे ब्रह्मा आप तो योग सिद्धियों के स्वामी हो, मैं तो सिर्फ गोपुत्र हूँ, एक गोप का बालक हूँ और आप बहुत वरिष्ठ हो और प्राचीन काल से आप रहते हो, मैं तो एक नन्ना मुन्ना बालक हूँ। आप वेदों में बड़े ज्ञाता हो, आप सारे परंपरा के लोगों को आप चारों वेदों को आप ही प्रदान करते हो, सबको देते हो परंपरा में, लेकिन मैं एक अज्ञानी ग्वाला हूँ जो गाय चराता हूँ मैं बस। और आप देवताओं के भी स्वामी हो, देवता लोग ऊंचे आचरणों में बहुत बड़े निपुण होते हैं ना, वैदिक संस्कृति को पालन करते हैं वो लोग, जैसे षोडश उपचार करते हैं, पंचरात्र की विधि अपनाते हैं और संस्कृत भाषा में बात करते हैं, वो बहुत बड़े पांडित्य होता है उनको, लेकिन मैं क्या सदाचार नहीं जानता हूँ, मैं हाथ में दही का बात लेकर खड़ा हूँ। तो आप जैसे इतने ऊंचे आचरण हमको मालूम नहीं है और आप तो माया के बड़े भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को, आप तो माया के बड़े नियंत्रक हो, लेकिन मैं तो माया से भ्रमित होकर बच्चों को ढूंढ रहा हूँ, गाय हमारे गोप मित्रों को ढूंढ रहा हूँ, मैं छोटा बालक हूँ, आप तो माया के बड़े नियंत्रक हो, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। इस तरह ब्रह्मा भगवान की बात सुनकर बहुत भयभीत हो जाते हैं कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया, भगवान इस तरह मेरी मुझे मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे। तो तब वो बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं पढ़िए, हे प्रभु
ना तो मैं ना ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता, तो भला मैं आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ।
अभी उनके गुणगान चालू है, ब्रह्मा जी करते हैं इधर से, बोलते हैं कि हे भगवान आप छोटे बालक जैसे दिखते हो लेकिन आप बालक नहीं हो, जैसे मार्कंडेय ने भी वही बोला, मार्कंडेय ऋषि प्रलय काल में तैरते हुए उनके सारे शरीर में इतने गाव हो गए थे, बहुत दुखित थे वो, चारों दिशा में पानी ही पानी दिख रहा था, प्रलय का पानी। उस समय एक वट वृक्ष देखा उन्होंने, उसकी ओर तैरते हुए गए। वट पत्र में एक नन्ना मुन्ना बालक, ऐसे ही नीला बालक, छोटा बच्चा था वो, लेटा था वो, उसके घुंघराले बाल, उसके चमकने वाले नीलमणि का शरीर इत्यादि को देख कर प्रसन्न हुए, दुख से मुक्त हुए। और वो पूछना चाहते थे कि बच्चे को, ए बच्चे तुम इतना खूबसूरत दिखते हो, तुम कौन हो? लेकिन बच्चे तो मुस्कुराते हुए ऐसे श्वास लिया, अंदर निगल लिया उनको, अंदर भी जाकर वही प्रलय का पानियों को देखा, मेरु पर्वत को देखा। उन्होंने सोचा कि क्या बच्चा के शरीर के अंदर इतना बहुत बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, अनेक सैकड़ों हजारों ग्रह हैं, तारे हैं। और बच्चा जब श्वास वापस लिया, बाहर निकल गए, तो सोचा कि साधारण बच्चा नहीं हो सकता, ये तो सारे ब्रह्मांड को निकलने वाला बच्चा है, ये कौन होगा, सोच रहे थे। तब वो बच्चा बोलने लगा, हे मार्कंडेय ऋषि, हे बच्चे, उनको बच्चे करके पुकारा उसने, माय डियर चाइल्ड मार्कंडेय। तब उन्होंने बोला, मेरा नाम हरि है, विष्णु है, कृष्ण है, अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं, मैं आदि पुरुष हूँ और मैं आपको दो वरदान देता हूँ, आपको इच्छा मृत्यु देता हूँ और आपको ऐसे स्मृति देता हूँ जिसका भंग कभी नहीं होगा। तो उनका आशीर्वाद, आप मेरे शुद्ध भक्त हो इसलिए मैंने आपको दर्शन प्रदान किया। और भगवान बोले, प्रलय के बाद सारे ब्रह्मांड के पानी मेरे पेट में जाता है, मैं पूरा उनको निगल लेता हूँ। तब वो समझ गए कि छोटा बच्चा आदि पुरुष है, भगवान कृष्ण है, विष्णु है, हरि है, समझ गए। इसी तरह जिस तरह मार्कंडेय ऋषि को समझ में आया कि भगवान देखने में बच्चे जैसे दिख रहे हैं, जैसे माँ यशोदा ने सोचा कि बच्चा छोटा दिख रहा है लेकिन मुंह खोलकर दिखाया, सारे ब्रह्मांड को दिखाया अंदर, है कि नहीं। इस तरह ब्रह्मा जी को भी समझ में आ गया, तो इसलिए भी बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, बोल रहे हैं कि ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्तयेव, बोलते हैं कि हे भगवान, आपको अपने मस्तिष्क, अपने बुद्धि लगाकर खोजना नहीं चाहिए इंसान को, इसके बदले क्या करना चाहिए? जीवन्ति संत मुखरिताम भवदीय वार्ताम, संत महात्मा जो आपके महान वैष्णव भक्त होते हैं उनके मुखारविंदों से सुनकर आपके बारे में समझना चाहिए, नहीं तो हम मनोधर्म के अनुसार कपोल कल्पित रूप से आपको समझ नहीं पाएंगे हम खोज करके। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर ये प्रायशो अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम, बोलते हैं कि अपने अपने आश्रम में स्थित कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, अपने शरीर, मन और वाणी इत्यादि को आपकी सेवा में जो लगाएंगे, संत महात्माओं से आपके बारे में कथा श्रवण करेंगे, और कथा श्रवण करना आपकी सेवा में लगना, इस तरह का जो करते हैं, आप अजित हैं लेकिन आपको जीत लेते हैं, वो आपको प्राप्त कर लेते हैं, तो वो लोग प्राप्त करते हैं। इस तरह ब्रजवासियों ने आपको प्राप्त किया। देखिए वृंदावन की रमणिया, देखिए अहो अतिधन्याम ब्रज गो रमण्याम स्तन्यामृतम पीतमतीवते मुदा, ये श्लोक आगे आ रहा है, मैं अभी बोल दिया आपको। मैं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कितने भाग्यशाली हैं ये वृंदावन की रमणिया, ये यशोदा के सखियां, जिस तरह यशोदा ने आपको स्तनपान कराया ऐसे ही ये गोपियों को भी आपने मौका दिया, उनके ही बच्चे बनकर आपने उनसे दूध पिया, उनको माँ बना लिया आपने, कितने भाग्यशाली हैं वो। यशोदा देखिए कितना भाग्यशाली, परम भाग्यशाली है आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। इस तरह उन्होंने बोला, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, बोलते हैं कि आप पूर्ण ब्रह्म हो लेकिन एक नन्हे मुन्ने बालक बनकर आप गोपों के पुत्र बनकर उनको भी आनंद दिया, पिताओं को भी आनंद दिया, माताओं को भी आनंद दिया और बच्चों को, गायों को भी आनंद दिया, क्योंकि उनका बछड़ा बनकर दूध पिया आपने। इस तरह वो बता रहे हैं सबको आप आनंद दिया है, तो वो लोग ने क्या किया है, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति एके वल बोध लब्ध ये, तेषाम अधो क्लेशलये वशिष्यते नान्यत् यथा स्थूल दोषा अवगातीनाम। अगर आपके श्री चरण को छोड़कर, आपके भक्तों के संग को छोड़कर कोई मनमानी करके मनोगठित रूप से आपको समझने के लिए कृत्रिम रूप से प्रयत्न करेगा, अनेक तरीके से वो अपने ध्यान के द्वारा, अपने खोज के द्वारा, अपने ज्ञान के बलबूते पर आपको समझने के लिए कोई तकलीफ उठाएगा क्या, आपको प्राप्त करेगा क्या उसको? इस तरह जैसे गांव में लोग ये जो व्हाट इज पैडी पैडी हाँ? नहीं दाने नहीं है, भूसा बोलते हैं। हाँ, ये भूसा को लेकर मारते हैं ना, पट पट मारते समय दाने निकलता है, उसको भूसा नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको धान बोलते हैं। नो नो, विद ग्रेन्स, विद ग्रेन्स धान बोलते हैं उसको। धान को मारने से दाने निकलता है। हाँ करेक्ट, तो दाने निकलता है, लेकिन अगर दाने निकलने के बाद क्या बोलते हैं उसको? भूसा बोलते हैं उसको, ऐसे स्टाक करके रखते हैं ना। अगर उसको कोई उठाकर मारेगा कुछ मिलेगा क्या? ये ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा आपको हाथ में, ऐसे बोलते हैं। इस तरह कोई अपने मस्तिष्क, अपने बुद्धि को लगाकर भगवान को खुद ही अपने बुद्धि के बलबूते पर समझना अच्छा हैगा, उसको सिर्फ तकलीफ ही मिलेगा, उसको बोलते हैं नान्यत तथा स्थूल तुषावगाति नाम, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे पास चार चार सर है, इसके द्वारा भी मैं आपको समझ नहीं पाया कितना मूर्ख हूं मैं, ऐसे अपने बारे में बोल रहे हैं। इसलिए वो शरण ले रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सब लोग पीछे बोलिए। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाक्पभुर्वेर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्।
हे प्रभु, जो व्यक्ति सत्य निष्ठा से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदान किए जाने की प्रतीक्षा करता है, अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है।
ये बोलते हैं कि अपने जीवन में आने वाले सब तकलीफों को वो भक्त सोचता है कि मेरे ही कुकर्मों का दुख मैं भोग रहा हूँ, किसी को कोसता नहीं, भगवान को भी कोसता नहीं वो, और आपकी अनुकंपा का राह देखते हुए रहता है, कब भगवान की कृपा मुझे मिलेगा मेरे जीवन में, कब मेरे भक्ति को भगवान स्वीकारेंगे। इस तरह अपने हृदय से, शरीर से, वाणी से वो सदा आपको सर झुकता हुआ, आपकी सेवा में जुड़ा हुआ, जो भक्त भक्तिमय सेवा में लगा हुआ है, कुछ आपसे कुछ आकांक्षाएं ना रखकर सिर्फ प्रेमा भक्ति में ऐसे जो जुड़ा हुआ है, उसको तो जरूर आप प्राप्त होते हो। जैसे समझ लीजिए, कोई लड़का है, एक करोड़पति का बेटा है, अगर लड़का को अगर करोड़पति बनना हो, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पिताजी के साथ रहना है, उनकी बात मानकर चलना है बस, ऐसे करता रहेगा, बाद में पिताजी उनको करोड़पति बना ही देंगे ना। इस तरह भगवान के साथ हम लोग जुड़े हैं, सिर्फ हम बिछुड़ना नहीं चाहिए, अगर हम बिछुड़कर मनमानी करेंगे तो हम अभागी हो जाते हैं, अभाग्यशाली हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान से, भगवान की भक्ति में जुड़े रहेंगे, उनको जैसे एक आम है पेड़ में जुड़ा रहता है, धीरे धीरे कच्चा आम भी पक्का आम हो जाता है। इस तरह नवसिखिया भक्त भी भक्ति में जुड़ा रहेगा तो पक्का हो जाएगा, वो परिपक्वता आ जाएगा उसमें। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्तों के संग से छूट कर मनमानी करके खुद ही अपने बुद्धि के बलबूते पर खोजना चाहेगा, कितना भी किताबें पढ़े वो, उसके उसके दिमाग में भगवान दर्शन नहीं देते उस ऐसे व्यक्ति को। श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषावगाति नाम। ये श्लोक पहले बोला, इसके आगे और एक श्लोक है, नचान्य एकोपि चरम विचिन्वन्, देयर वन मोर वर्स आगे आएगा शायद, नहीं ये श्लोक मिस हो गया, एक श्लोक है और एक श्लोक है। अतापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यमेको पिचिरं विचिन्म। सुंदर श्लोक है, बताते हैं अतापिते देव पदाम्बुजद्वया। हे भगवान, आपके दो पद अंबुज होते हैं, पद कमल होते हैं, उस पद कमल को नकार कर अगर कोई व्यक्ति अपने ही बुद्धि से आपको समझना समझने के लिए प्रयत्न करेगा, भक्ति मार्ग को छोड़कर अपने ज्ञान के बलबूते पर आपको समझना चाहेगा, वो समझ नहीं पाएगा। जैसे अगर मैं किसी को पूछता हूँ मेरे नाक किधर है, तो तुरंत बोल देंगे आपका नाक किधर है। अगर कोई बोल नहीं नहीं मैं खुद ही ढूंढ लूंगा नाक किधर है, तो हम ढूंढेंगे नाक किधर है, ये नाक है क्या, ये नाक नहीं, ये नाक है क्या, ये भी नाक नहीं, ये नाक है क्या नहीं। ऐसे करोड़ों जन्म घूमने के बाद बोलेंगे बहुओ नाम जन्म नामते, नाक को पहचान देगा। ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, बहुत जन्म के बाद। नहीं तो हम गुरु परंपरा में वैष्णव की आश्रय लेकर सुनेंगे तो आसानी से वो बोल देंगे ये भगवान कृष्ण है, आपको प्रदान कर देंगे आसानी से। इसलिए हम वैष्णव गुरुओं के आश्रय लेकर हमें कृष्ण को समझना चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा जैसे चार चार चतुर्मुख होने के बाद भी वो समझ नहीं पाए, वो बता रहे हैं। तो ऐसे अनेक प्रार्थनाएं हैं, और एक सुंदर प्रार्थना का प्रार्थना में एक उदाहरण देते हैं ब्रह्मा जी। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है, वो बोलते हैं कि ये ब्रह्मांड भी एक पेट जैसा है ना, ब्रह्मांड जैसे माँ के पेट के अंदर जो बच्चा जब रहता है, कभी कभी बच्चा लात मारता है अंदर ही अंदर, जब उसका जन्म होता है 9 महीने में, 7-8 महीने बोलते हैं। और एक श्लोक में बोलते हैं हे भगवान, मैं वृंदावन में देख रहा हूँ इतने सुंदर हरियाली है, रंग बिरंगे फूल हैं, भ्रमर गूंज रहे हैं, यमुना बह रही है, आपकी मुरली का बाज सब दिशाओं में सुनाई दे रहा है, गोप बाल आपके साथ नाच रहे हैं, गोपियों के अंदर इतना शुद्ध भक्ति है आपकी ओर, और मैं देखता हूँ कि बाघ और हिरण दोनों यमुना में पानी साथ में पीते हैं, मनुष्य और बाघ बाघ के बीच में भी कुछ ये नहीं है, डर नहीं है मनुष्यों को, भाग को देखकर भाग दूध पीकर शांत से रहता है। यत्र नहि सर्ग दुर्वैरा सहासन मृगादयः मित्राणि इव अजिता वास दुर्तर्षकादिकम्। ये तो भागवत में श्लोक है, ऐसे गर्ग संहिता में भी एक श्लोक है, ऐसे एक श्लोक है शार्दूल बालकैर यत्र, ऐसे बताया गया कि शार्दूल का मतलब है बाघ, शार्दूल बालकैर का मतलब क्या है, ये बाघ का बच्चा जिधर है, क्रीडंती मृग बालक का है, ये गर्ग संहिता में ऐसे बताया गया, वो बाघ के बालक के साथ मृग के भी बालक दोनों खेल रहे हैं साथ में। देखिए अगर किसी का बच्चा है निकट ही कौन होंगे, माँ होंगे, अगर मृग का भी बच्चा है, ये शार्दूल का भी बच्चा है, तो दोनों की माँ निकट ही है, दोनों साथ में खेल रहे का मतलब क्या है, दोनों माता के बीच में कुछ झगड़ा नहीं है वृंदावन में, ऐसा बताया जा रहा है। इस तरह नेवला और सर्प साथ में खेलते हैं उधर वृंदावन में, ऐसे बताते हैं, किसी के बीच में वैरी भावना नहीं है, यत्र नहि सर्ग दुर्वैरा। तो ये सब देखा अपने आंखों से, दृष्टिगोचर हुआ उनको, किसको, ब्रह्मा को। वो सब देखने के बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं हे भगवान, इस जगत में जो लोग भगवान कृष्ण को यथारूप में समझते हैं, वो भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी यथार्थ को नहीं मानते, तो कृष्ण का आपके, इसलिए मैं समझता हूँ वृंदावन के सब वासियां आपके श्री चरण में समर्पित हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधेर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम नतेषाम। लेकिन ये बोलने के पहले एक सुंदर चर्चा होता है परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में, वो लंबा चर्चा है लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बोल देता हूँ। आपको परीक्षित के मन में एक अद्भुत प्रश्न उठा, परीक्षित पूछ रहे थे कि आपने बोला कि वृंदावन के सब बड़े गोपियां जो हैं यशोदा के सखियां, वो कृष्ण को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते थे, ये कैसे हो सकता है, उन्होंने पूछा। कोई भी माँ जो होता है, बच्चा जितना भी कुरूप बच्चा हो उनका, जितना भी मंद बुद्धि वाला भी हो, फिर भी हर एक माँ किसको ज्यादा प्रेम करती है, अपने बच्चे को। ऐसा बोला गया है कि काक जो होता है ना, काक, काक का बच्चा सुंदर नहीं दिखता, वो क्या 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 से बहुत गंदा दिखता है, फिर भी माँ सोचते है कि मेरा बच्चा सबसे सुंदर है। तो हरेक माँ क्या सोचते अपने बच्चे के बारे में, मेरा बच्चा सबसे सुंदर है। लेकिन ऐसा कैसा हुआ कि वृंदावन के बड़े गोपियां ने सोचा कि मेरे बच्चे से भी मैं कृष्ण को ज्यादा प्रेम करता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, ये प्रश्न पूछा परीक्षित ने। जवाब में दिया सुखदेव गोस्वामी ने, बोला ये एकदम विस्तृत रूप से बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो इस दुनिया में हर एक जीव जो है वो अपने नाता रिश्ता को प्रेम करता ही है, लेकिन अपने नाता रिश्ताओं से ज्यादा अपने शरीर को प्रेम करता है ज्यादा। जैसे एक बार वैज्ञानिकों ने एक परीक्षा ली, टेस्ट किया उन्होंने, एक बंदर था एक टीपा के अंदर रखा था उसके बच्चे के साथ, तब पानी डाला अंदर, पानी पानी बढ़ाते गए, तो बंदर ने क्या किया अपने बच्चे को उठा लिया अपने पास, तो पानी का लेवल इतना तक आ गया, इतना तक आया, बच्चे को इधर तक पकड़ा इसे, तो अब इतना तक आ गया खुद श्वास नहीं ले पाए तो बच्चे को डाल दिया नीचे, उसके ऊपर डालकर उसके ऊपर चढ़कर कूद गया वो, अपनी जान बचाने की योजना बना लिया उसने वो बंदर ने। इससे उन्होंने एक सबक सीखा, इसका मतलब क्या है, पहले अपने बच्चे से बड़ा आसक्ति था उसको, लेकिन अपने बच्चे से भी ज्यादा आसक्ति किससे, अपने शरीर से, खुद के शरीर से। लेकिन जब एक जीव समझ जाता है मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर तो मृत पदार्थ है, मिट जाएगा, जीर्ण हो जाएगा एक दिन, लेकिन मैं कौन हूं, आत्मा हूं, तो वो अपने आत्मा से प्रेम करता है कोई व्यक्ति। लेकिन अपने आत्मा से प्रेम करने वाले जीव जो होता है धीरे धीरे समझ लेता है कि मेरे आत्मा भगवान वासुदेव का ही एक अंश है, तो वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है और आनंद के भंडार है और मेरे स्वामी है और वो मेरे अंतर्यामी है। जब समझ लेता है तब वो जीव का आसक्ति अपने जीव को, आत्मा अपने को भी छोड़कर भगवान के ऊपर उनके हृदय में क्या होता है, अनुराग होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि उन्होंने कृष्ण को ज्यादा प्रेम क्यों किया, क्योंकि कृष्ण आत्मा के भी आत्मा है, आत्मात्मना ऐसे बोला उन्होंने। तब उन्होंने बोला क्योंकि कृष्ण आत्मात्मना है, आत्मा का भी आत्मा है, इसलिए सब ब्रजवासियां भगवान के श्री चरण में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। समाशिता ये पद पल्लव प्लमुन, तब बोला उन्होंने यह श्लोक, महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदेर वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम नतेषाम। बोलते हैं देखो इस दुनिया में बहुत बड़ा संसार सागर है, इसको पार कर पाना मुश्किल है, नामुमकिन है हमारे लिए, लेकिन इतने बड़े विशाल संसार सागर एक गाय के बछड़े के कुर के अंदर जितना पानी बैठेगा उतना ही पानी के बराबर, इतना संकुचित हो जाता है, इतना छोटा बन जाता है भक्तों के लिए, एक बच्चा भी उसको पार कर सकता है, कैसे इतना बड़ा संसार इतना छोटा हो जाता है, लेकिन जो भगवान के श्री चरण में आश्रित हैं उनके लिए ऐसे छोटा हो जाता है, उनको संसार पार करना बहुत आसान काम है। क्यों, क्योंकि वो लोग देहात्म बुद्धि को ही छोड़ देते हैं ना, देहात्म बुद्धि को छोड़कर, दुनियादारी चीजों को छोड़कर, ग्राम्य बुद्धि को छोड़कर, भौतिक वासनाओं को, आकृष्टों को छोड़कर, सदा कृष्ण में ही रमते हैं, कृष्ण की लीला में ही डूबे रहते हैं, कृष्ण के चिंतन में, वो सोते समय कृष्ण कृष्ण बोलते सोते हैं, उठते समय कृष्ण कृष्ण बोलते उठते हैं, खाते समय कृष्ण का नाम लेकर खाते हैं, उनके मनोरंजन भी कृष्ण में ही है। तो कृष्ण को भूल कर एक क्षण मात्र के लिए भी वो कुछ और चीज नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के लिए कृष्ण तो उनके हृदय में बस जाते हैं, वो एक क्षण के लिए भी बोलेंगे नहीं कृष्ण को, तो उन लोगों को संसार का चिंता ही नहीं है, ऐसे बताते हैं इस श्लोक में। इसलिए बताते हैं जिन्होंने प्रभु के चरण कमलों की नाव को स्वीकार किया है बस, तो यही बताया जाता है। अनुवाद पढ़ लीजिए।
जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को स्वीकार किया है, दृश्य जगत के आश्रय एवं मूल राक्षस के शत्रु मुरारी नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उनके लिए यह भव सागर बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, ना ही पग पग पर कोई संकट होता है।
इस दुनिया में पदम पदम यत विपदाम, हर पद पद में विपद है, तो बड़ा खतरनाक दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। कोई कोई सड़क में जा रहा है, बड़ा ट्रक आता है, फट करके उसको मार देता है, बाइक में नेशनल हाईवे में जाने वालों को ऐसे है, और उस तरह कभी भी किसी को कुछ भी व्याधि हो जाता है, ये शरीर में, ये शरीर इतना कमल है दल जल है, जीवन तलमल है, कुछ भी हो सकता है। देखिए पंचमहाभूत आप लोग जानते हैं, लेकिन हर चीज पंचमहाभूत में हमारे सुख के लिए जो कारण बनता है वो ही दुख के लिए कारण बन सकता है। अभी हम लोग बैठे हैं भूमि में, भूमि में भूकंप हो सकता है, और आप हो, आपको मतलब पानी, अभी पानी का सहारा लेकर ही जहाज समुद्र में दूसरी ओर पार करके जाता है, लेकिन वो जहाज उस समुद्र के अंदर ही डूब सकता है। ऐसे अभी आग होता है, आग के कारण ही हम लोग तरकारियों को पका कर भोजन खाते हैं, प्रसाद खाते हैं ना, लेकिन वो आग ही किसी के मृत्यु का कारण बन सकता है इसे। तो इस तरह आप देख सकते हैं पंचमहाभूत जो है, जो हमको जीने देते हैं वही हमको मार भी सकते हैं। इतना खतरा है, क्योंकि हम पंचमहाभूतों से हम चारों ओर से हम हमको गिरा हुआ है। इसलिए किसी को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सुरक्षित अवस्था में इस दुनिया में रह सकता हूँ। इसलिए हरेक को भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा श्रवण करते रहना। कभी भी शरीर को कुछ भी हो जाएगा, पता नहीं हमारा आयु कितना रखा हुआ हर एक जीव के लिए। इसलिए जब तक जान है शरीर में, जब तक हमारे पास आयु है, समय है, समय की बर्बादी ना करते हुए मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। और इधर एक श्लोक में लास्ट में बोलेंगे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि हे भगवान मेरा एक ही प्रार्थना आपसे, वो बोलते हैं कि आप मुझे अगले जन्म में आप ऐसा मुझे एक शरीर दीजिए, मुझे एक जन्म दीजिए जिसमें मैं भी आपके भक्तों में गिना जाऊंगा, और ऐसे भक्त का जन्म मुझे अगर जरूरत पड़े तो मुझे एक जानवर नहीं तो पंछी भी बना सकते हैं आप, ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मांग रहा हूं कि गोपबाल बना लो, गोपी बना लो, नहीं, किसी भी रूप मुझे प्रदान करना चाहते हो। तदस्तु मे नाथ सभूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तुवा तिरश्चाम येनाहमेकोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। मुझे एक ही इच्छा है कि आपकी पाद पल्लव, आपके श्री चरणों में मैं समर्पित होकर रहूं, लेकिन भवज्जनानां आपके भक्तों में मैं गिने जाऊं। और अब किसी भी भवे यत्र वा अन्यत्र वा कुछ भी आप देना चाहते हैं, शरीर आप दे सकते हैं, मैं स्वीकारूंगा, ऐसे बताते हैं। इस तरह अनेक श्लोकों में गुणगान करते हैं, लेकिन अभी समय की पाबंदी है। अभी हम लोग धेनुकासुर की लीला में प्रवेश करते हैं। तो धेनुकासुर का लीला हम पढ़ते हैं 15वां अध्याय में दशम स्कंद के 15वां अध्याय। लेकिन ये धेनुकासुर का वध चालू होने के पहले इनका तो ये श्लोक चालू होता है, धेनुकासुर का वध 27 से चालू होता है, लेकिन उसके पहले बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। उसने जब अपने गोप बालकों के साथ वन में जो प्रवेश करते हैं उसके बारे में वर्णन है, तो इसको गोचारण लीला बोलते हैं। देखिए सुबह सुबह कृष्ण बलराम सब गाय बछड़ों के साथ, गोपों के साथ वन में प्रवेश करते हैं। ततश्च पौगंडवय श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर् वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतु। देखिए पहले कृष्ण का नाम था वत्सपाल, अभी उनकी इच्छा हुई कि मैं गायों को भी लेकर गहरे वन में जाकर मैं उनको चराने के लिए जा कर रहा हूँ मित्रों सहित, लेकिन यशोदा ने मना किया। यशोदा ने बोला कि क्या जरूरत है कहना तुमको उतना दूर जाने के लिए, इतने नौकर चाकर है वो करेंगे। लेकिन कृष्ण ने बोला नहीं नहीं, हम पिताजी से बोल दिया, पिताजी ने मान लिया, और सब गोप पिताजी के मित्र भी जो थे ना, नंद उपानंद भाई इत्यादि, वो लोग पशुपाल सम्मत का मतलब है सब पशुपाल ने सम्मति दे दिया है कि कृष्ण बलराम ने उनको बोला कि देखिए हम बड़े हो गए हैं, हमारी बुद्धि भी बड़ा हो गया है, हमको कुछ चिंता नहीं, गाय को लेकर हम जाएंगे जंगल में। लेकिन उनका एक मीटिंग हुआ, उसमें अनुमति दिया गया इनको, ठीक है अभी वत्सपाल कृष्ण अभी क्या बनेंगे, गोपाल बन जाएंगे अभी, ऐसे बताया गया है। तब उन्होंने क्या किया, गाश्चारयन्त सखिभिः समं पदैर, गाय को चराते हुए जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं। वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु, वृंदावन के पुण्य को और बढ़ा दिया। देखिए भगवान के श्री चरणों में कुछ चप्पल नहीं है, क्योंकि जब उनके कोमल श्री चरण थे बचपन में, तब चलते समय उनके उनके पांव में जो सोलह चिन्ह होते हैं ना, वो भूमि में ठीक तरह से पड़ नहीं पाता था, क्योंकि उनके श्री चरण बहुत कोमल थे उस समय। लेकिन अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए उनके सोलह जो चिन्ह हैं उनके पांव में, सबके सब चिन्ह भूमि में पड़ता है। और इस तरह वो सब चिन्ह भूमाता भूदेवी की ऐश्वर्य को और बढ़ा दिया। वृंदावन की वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु, ऐसे बताते हैं। इस तरह जब भगवान ऐसे प्रवेश किया जंगल में, उनकी प्रवेश देखकर, उनके जंगल में प्रवेश को देखकर, वन मिनट आई विल जस्ट शो अनदर पीपीटी। ये वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, हाँ ये जो है देखिए, कृष्णा बलराम और गोपबाल सब लोग गायन बचनों के साथ वन में प्रवेश कर रहे हैं। तब सब वन में रहने वाले पंछियां, भ्रमर और यमुना में रंग बिरंगे कमल हैं, लाल कमल है, पीला कमल है, नीला कमल है, इस तरह उनमें बैठकर भ्रमर गूंजते हुए शहद चूस रहे थे, मधु चूस रहे थे वो। लेकिन कृष्ण बलराम को देखकर तुरंत भ्रमर भी उनके साथ उड़ने लगी गाते हुए। और इधर बताते हैं सुखदेव जी, ये भ्रमर कौन है? बड़े बड़े ऋषि मुनिया हैं, और ऋषियों में भी कुछ कुछ ऋषियों को हंस के साथ तुलना किया है, कुछ बाकी ऋषियों को भ्रमर के साथ। क्यों? अभी हंस जैसे जो ऋषि होते हैं वो स्वच्छ जीवन, शुद्ध जीवन जीते हैं, भगवान का ही स्मरण करते हैं, गंदे चीजों का स्मरण कभी नहीं करते। लेकिन भ्रमर जो है वो रसिक भक्त हैं, जो रसिक भक्त होते हैं भगवान के मधुरिमा को चखने वाले होते हैं, ऐसे मुनिया हैं, ऋषियां हैं। तो वो लोग जो भ्रमर बने वृंदावन में, तो कृष्ण के साथ वो भी जंगल में प्रवेश करने लगे गाते हुए ऐसे। और पंछियां कौन है? पेड़ की डालियों में बैठकर ध्यान पूर्वक भगवान की मुरली की मधुरिमा को सुन रहे हैं, वो भी बड़े योगी हुए हैं पूर्व जन्म में। तो यमुना भगवान इस तरह भगवान को जाते हुए देखकर अपने कमल को फेंक रही है उनके श्री चरणों में इस तरह। और पेड़ पौधे जो थे, पेड़ों ने सोचा कि देखो देखो कितना सुंदर दृश्य है, भगवान अपने मित्रों के साथ जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो तो पेड़ तो अक्षर बोलते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास नहीं कर सकते वो, तो इसलिए पेड़ रोते हैं। तो वो रोना ही उनका मधु के रूप में निकलता है पेड़ों से है? और पेड़ अपने फल, अपने फूल इत्यादि को ऐसे बलिदान के रूप में अर्पण करता है सामने कृष्ण को। तब कृष्ण अपने भैया बलराम को बोलते हैं, अभी बलराम को वर्णन करेंगे वो, बढ़िया। क्या बोलते हैं कृष्ण बलराम को, क्या बोलते हैं?
कृष्ण बलराम से वृक्षों आदि की स्तुति करते हैं। वृक्ष आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, मधुमक्खियां आपकी महिमा का गान कर रही हैं, मोर नाच और झूम रहे हैं, कोयल वंदना करती है।
देखिए, अगर कोई आपके घर में मेहमान वैष्णव आते हैं, गुरु जी आते हैं, आपको क्या करना चाहिए? कोयल जैसे मीठे आवाज से उनकी स्वागत करना चाहिए, और मोर जैसे नाच नाच कर स्वागत करना चाहिए है? जैसे हमारे मंदिर में कोई सन्यासी आते हैं तो नाच कर भक्त लोग स्वागत करते हैं, और कोयल जैसे मीठे ध्वनि में भगवान का नाम गाना चाहिए है ना, ऐसे वो नाच कर गाकर उनको स्वागत कर रहे हैं। और
आपके स्पर्श से पृथ्वी सौभाग्यशाली है, गोपियों का आलिंगन जिसके लिए लक्ष्मी भी लालायित रहती है।
देखिए, आप देखेंगे वृंदावन में, एक्चुअली वृंदावन ही नहीं, अगर किसी के घर में आप जाते हैं, वो मेहमान जब आते हैं, अगर मेहमान को जो बहुत आदर देने वाले लोग बोलते हैं, ये तो आपका ही घर है, बोलेंगे सुना आपने, अब आप वो पूछेंगे, अगर कोई मेहमान आकर पूछता आपको मैं किधर बैठा हूँ, बोले किधर बैठो, ये तो आपका ही घर है, जिधर बैठना आप बैठे, जो खाना है आपका ही है, हम कौन, हम तो आपके दास हैं, ऐसे बोलेंगे ना। इस तरह भगवान खुद की गुणगान नहीं कर रहे हैं, किसकी गुणगान कर रहे हैं? बलराम की। तो एक्चुअली ये पेड़ किसको दे रहे हैं सब फल? कृष्ण को ही दे रहे हैं, लेकिन वो भगवान बोल रहे हैं बलराम जी को आपको दे रहे हैं, वो प्रेम से अपने भैया को आदर देगा। दूसरा कारण भी है, उनके भैया उनसे बड़ा है ना, इसलिए तो रामायण की लीला में बलराम जी एक छोटे भाई के रूप में आते हैं लक्ष्मण के रूप में, इधर अभी बड़े भाई हैं। इसलिए कृष्ण का अलग रस होता है अपने समा गोपों के साथ और कनिष्ठ गोपों के साथ, जो वरिष्ठ हैं और बड़े भाई हैं उनके साथ अलग रस होता है उनका, क्योंकि थोड़ा वात्सल्य भी मिला हुआ होता है, मिश्रित होता है बलराम में। बलराम कभी डांटते भी हैं कृष्ण को, एक बार जब वोकल बंधन लीला में बलराम आकर खुद उन्होंने बोला, बलराम ने, देखो तुम्हारे गोप मित्र तुमको छुड़ा नहीं पाए लेकिन मैं छुड़ा दूंगा तुमको काना, क्योंकि वात्सल्य भी मिश्रित था उनके लीला उनके मन में। तो कृष्ण ने बोला, हाँ भैया आप तो कर सकते हो, कर दो मुझे मुक्त कर दो। लेकिन बलराम ने बोला, माँ ने तुमको बांध कर क्यों रखा पहले वो बोला मुझे। तब कृष्ण ने बोला, क्यों बांध कर रखा? वो बोल रही कि मैं घर घर जाकर मैं वहां का चोरी करता हूँ, इसलिए बांध कर रखा है, बाहर नहीं जाऊंगा ऐसे। तब बलराम ने बोला, ठीक है मैं छुड़ा देता हूँ तुमको, लेकिन तुमको घर घर नहीं जाने का, ठीक है ना? तब कृष्ण ने बोला, तो छुड़ाने का मतलब क्या है? हमको छुड़ाने के बाद भाग जाएंगे घर घर में माखन चोरी के लिए? तब बलराम ने बोला, नहीं नहीं, अगर तुम घर घर जाकर माखन चोरी करोगे तो नहीं जाने का, मैं तुमको छूटूंगा, तुमको छुड़ाऊंगा नहीं, ऐसे बोल देते हैं। इसका मतलब है बलराम कभी कभी मित्र का साक्ष्य रस में संग करते हैं, कभी कभी वात्सल्य में भी। तभी कृष्ण बलराम की बाल्य लीलाएं दिखा गया है। अभी कृष्ण यमुना के किनारे मित्रों के साथ आनंद पूर्वक गायों और अन्य पशुओं को चराते हैं। इधर देखिए क्या क्या खेल किया उन्होंने, पशु पक्षियों की नकल किया उन्होंने, पढ़िए।
भौरों का हर्षोल्लास पूर्ण गायन, तोतों की बोली, कोयल की बोली, हंसों की करलव, मोर का नृत्य, गंभीर गर्जन के स्वर में दूर गई गायों का नाम बड़े प्रेम से पुकारते।
वो एक तेरा कदम नाम का एक पेड़ है, उसके डाले में बैठकर कृष्ण मुरली बजाते थे, हमसी दवली रंगी चावरी नंदिनी, ऐसे अलग अलग नाम से पुकारते थे। तो कैसे पुकारते थे? मुरली की बात से, ऐसे नहीं कि मुख से पुकारते थे। तो उनके पुकार से जैसे मृदंग मुखी गायें हैं जिनका मुख मृदंग जैसे दिखता है, तो वो सब गायें हैं, सब अनेक गायें आ जाते हैं, ऐसे उनका ग्रुप होता है उनका। तो भगवान के पास भी ऐसे फीडबैक होता है, उनके पास भी। तो एक मणि को बोलते हैं, ठीक है ये गाय आ गई, अभी अगले वर्ग का गायों को बुला पुकारते थे, ऐसे करते थे। ऐसे भगवान मुरली बजा बजा कर गायों को पुकारते थे, गायों को बहुत आनंद आता था गायों को। तो इस तरह किस तरह के खेल करते हैं, देखिए कृष्ण नकल कर रहे हैं एक मयूर को, सब उनके गोपाल हंस रहे हैं। तो जंगल में जाकर इस तरह विविध तरह के खेल कूद में मजे में समय बिताते हैं अपने मित्रों के साथ। इसलिए आप देखेंगे, रसो वै सह रसम ही ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति, ऐसे वेदांत सूत्र में बताया गया है। भगवान रसों के भंडार हैं और रस का आदान प्रदान करना ही उनका एकमात्र काम है भगवत धाम में अपने भक्तों के साथ। बाकी उधर दफ्तर खाना नहीं जाना है, कुटुंब भरण नहीं करना है, कसरत नहीं करना है, उधर कुछ नहीं है, उधर सिर्फ लीला ही है। इस तरह जिस तरह अभी गोपों के साथ कर रहे हैं और गोपियों के साथ करेंगे, माता पिता के साथ करेंगे लीला, बस पढ़िए।
कभी कभी वे चकोर क्रौंच चक्रवाह भारद्वाज जैसे पक्षियों की नकल करके चिल्लाते, कभी छोटे पशुओं के साथ बाघों तथा शेरों के बनावटी भय से भागने लगते।
हाँ अभी वो पिक्चर आएगा, बाद में आएगा उसका। बलराम तक कर दूसरे ग्वाल बाल की गोद में अपना सिर रखते हैं और कृष्ण उनको पांव दबा रहे हैं। मतलब क्या है, कृष्ण परम सत्य भगवान है फिर भी वो बलराम जी की पांव दबाते हैं। इसका मतलब है भगवान का भूमिका नहीं निभाते हैं वृंदावन में, कृष्ण अपने भक्तों का भी सेवा करते हैं, अपने मित्रों का गुणगान करते हैं। कभी कभी कृष्ण तक जाते हैं, बाकी गोपाल उनको पत्तों से कलियों से तकिया बनाकर उनको अपने गोद में रखते हैं और इस तरह विविध सेवाएं देते हैं। देखिए इधर सुंदर वो चरण कमलों को दबाते हैं उनके भक्त। अन्य बालक स्नेह के साथ समुचित गीत गाते हैं, इस तरह वृंदावन की विविध लीलाओं का सुंदर वर्णन है इस अध्याय में। देखिए इधर जो घटना घट रही है देख रहे हैं, कभी पेड़ के मूल में लेटते थे भगवान ऐसे अपने हाथ को ऐसे रखते हुए, तो यशोदा स्मरण कर रही है इस लीला का, घर में बैठे बैठे मेरा काना ऐसे लेटेगा उसके मित्र लोगों के साथ लीला करेगा ऐसे। इधर बलराम जी दबा रहे हैं, उनके पांव दबा रहे हैं ऐसे। पढ़िए इस प्रकार।
इस प्रकार कृष्ण अपना दिव्य ऐश्वर्य छिपाकर ग्रामीण बालक की भांति कार्य करते हुए कभी कभी ऐसे कार्य करते जो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं।
तो इस तरह गाय बछड़ों को लेकर वृंदावन के जंगल में घूमते हैं, दोनों मुरली बजा रहे हैं। देखे इधर जो पिक्चर दिखाया है क्या है, जब आपने देखा होगा जंगल में जो बाघ आता है सब हिरण भागते हैं ना, इस तरह गोप बालक नाटक करते हैं उनका इस तरह नाटक करते हैं। अभी ग्वाल बाल ने एक अनुरोध किया भगवान को, पढ़िए।
ग्वाल बालों द्वारा अनुरोध सुदामा और स्तोप कृष्ण।
ठीक है मैं बोल देता हूँ, इसको पढ़ने के लिए समय लगेगा। देखिए ग्वाल बालों ने कृष्ण को, कृष्ण से अनुरोध किया कि आप हे बलराम आप बड़े शक्तिशाली हो, आप और ये कृष्ण आप दोनों से हमारा एक विनती है, हम लोगों को बहुत भूख लग रहा है। इधर एक तालवन नाम का एक जंगल है, जिधर एक धेनु नाम का एक धेनु का असुर रहता है, धेनुक। तो इस जंगल में बहुत कुछ ताल के पेड़ हैं, ताल के फल हैं, लेकिन ये किसी को अंदर आना नहीं देता। ये खुद भी खाता नहीं, किसी को खाने के लिए भी नहीं देता, ऐसा है। ये कंस का एक कंस ने ससुर को रखा था उसको, उस जंगल को सुरक्षा करने के लिए। तब इन्होंने बोला कि एक्चुअली गोपालकों ने क्यों बोला कि हमको भूख है, आप देखेंगे जो सज्जन होते हैं अगर वो किसी मेहमान को खिलाना चाहते हैं तो वो बोलेंगे मुझे भूख है मैं खाने वाला, आप भी खाइए, तब तो मेहमान भी मानते हैं खाने के लिए। हाँ कभी कभी आपने देखा होगा ये सुसंस्कृत लोगों के जीवन में ये फॉलो करते हैं, वो नहीं बोलेंगे कृष्ण को हे कृष्णा ये फल लेकर खाओ तुमको भूख रहेगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हमको भूख लग रहा है, ऐसे बोलने से कृष्ण क्या करेंगे, जरूर फल निकाल कर देंगे उनको, जब फल नीचे आएगा क्या करेंगे उसको कृष्ण बलराम को खिला देंगे, ये उनका योजना था। ऐसे उन्होंने उनसे विनती किया, आपको लगता है तो हमारा अच्छा विचार है तो चलिए हम उस जंगल में जाते हैं। अभी वो लोगों ने बोला इस जंगल में एक बहुत बड़ा गधा रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर ऐसे, तो लेकिन हमें डर नहीं क्योंकि कृष्ण बलराम आप दोनों उस नाउ यू कैन शो दिस एंड आई विल शो अनदर वन, आई विल सी अनदर वन, यू हैव दिस वन, दिस इज स्लाइड नंबर 16। Got it? तो अभी हम धेनुकासुर के वध की लीला पढ़ने के पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसके पूर्व जन्म के संबंध में। गर्ग संहिता में बताया गया है कि पूर्व जन्म में ये राजा बलि का बेटा था वो, हाँ करेक्ट, और उसका नाम था साहसिका, नाम था उसका। एक बार वो 10,000 स्त्रियों को लेकर गंधमादन पर्वत में चला गया था वो, वो दुर्वासा मुनि एक उसी गुफा में ध्यान में बैठे थे, और जब उन्होंने सुना इस तरह विविध तरह के वाद्य इत्यादि को बजाते हुए ये लोग उधर सुख लूटने के लिए गए थे, जैसे पार्टी में जैसे लोग लोनावाला शिमला ऐसे हिल स्टेशन में जाते हैं, ये लोग ऐसे गए थे। तो दुर्वास मुनि बड़े वैरागी होते हैं, वो लकड़ी का पहने हैं चप्पल है, और हाथ में एक लाठी होता है, वो आप लोग जानते हैं दुर्वास क्रोधित होते हैं, उन्होंने चिल्लाया बोले अरे धूर्त, अरे तुम गधे जैसे भोग रहे हो इधर आकर, ये पवित्र स्थान है जिधर हम लोग तपस्या कर रहे हैं, तो तुम ये गधा बनो। मैं छोटे रूप से आपको बोल दिया ये गर्ग संहिता में, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका बहुत विस्तारित वर्णन दिया गया है इधर, आप थोड़ा उसको एलाबरेटली आपको बताता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया कि देवताओं को पराजित करके साहसिक ने एक बार क्या किया, अभी सोचा उसने कि मैं देवताओं को पराजित कर दिया, बहुत सब जीत लिया मेरे पास है, अभी थोड़ा भोग भी करना चाहिए, अभी है युद्ध हो गया, इस तरह सोचकर अपने सेना को भी लेकर अनेक स्त्रियों को भी लेकर वो भोगने के लिए गया था उधर उस गंधमादन पर्वत के निकट। लेकिन जाते समय उन्होंने तिलोत्तमा नाम का एक बहुत सुंदर अप्सरा के साथ मुलाकात हुआ उसको, उस समय देखा कि वो बहुत खूबसूरत थी, उसके वर्णन बहुत श्लोकों में किया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, उसकी चलना, उसकी फिरना, उसकी मुस्कान, उसके नाच, उसके वेशभूष, उसकी खूबसूरती इत्यादि देखकर, उसकी तिरछी नजर इत्यादि को देखकर वो मोहित हो गया साहसिक। तो उसको लेकर बोला कि तुम मेरे साथ आओ इस गुफा में, आओ ऐसे गुफा में लेकर लेके जाकर उसके साथ भोगने के लिए वो गया था। तो इस तरह जाते समय दोनों हंसते हुए इस तरह का एक दूसरे को आलिंगन करते हुए ऐसे कार्य किया, लेकिन उसी गुफा के अंदर ही बैठकर तपस्या कर रहे थे। कौन? दुर्वासा मुनि। वो देख रहे, शर्म नहीं आता तुमको, इधर एक ऋषि बैठकर तपस्या कर रहा है, तुम लोग इधर आकर इस तरह तुम गधे जैसे अपने सही चेतना को खो बैठे हो। तो तब तिलोत्तमा डर गई, वो नमस्कार करके भाग गई। ऐसे उसके बाद दुर्वासा मुनि से उसको श्राप मिलता है इस तरह। वो क्योंकि मदमत्त हो गया था, वो भी जैसे हम लोग सुनते हैं ना नलकुर मणिगिरु के बारे में, ऐसे ही ये मदमत्त हो गया था अभी। तो उन्होंने डांटा और तिलोत्तमा ने अपने आप को कोसा, उन्होंने बोला कि मैं मूर्ख स्त्री हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं पतित हूँ, इस तरह आप कुछ श्राप मत दीजिए ऐसे। लेकिन दुर्वासा मुनि ने साहसिक को दिया, दोनों को श्राप दिया उन्होंने। इनको साहसिक को क्या दिया, उन्होंने बोला बताता हूँ, हाँ इधर बोलते हैं, तुम बड़े भाग्य, तुमको एक भाग्य भी मैं प्रदान करता हूँ, तुमको क्या है, तुम तुम्हारे पूर्वजों से सुरक्षित रहोगे। पूर्वज कौन है? उनके बलि महाराज। इसके कारण तुमको भगवान खुद नहीं मारेंगे, तो उनसे सुरक्षित रहकर तुम भारतवर्ष में एक तालवन के वृंदावन में जाकर तुम रहोगे, उधर रहोगे। और उन्होंने बोला कि मैंने तो तुमको बोल दिया गधा बनोगे, लेकिन गधा भी वृंदावन में बनोगे तुम, गधा अच्छा है ना वृंदावन के स्थान में। तो भगवान के हाथ से तुम्हारा ये बलराम के हाथ से उनका मृत्यु होगा, लेकिन तुम मुक्त हो जाओगे उसके बाद, ऐसे वरदान दिया था उन्होंने। और तिलोत्तमा को बोला तुमको राक्षसी बनना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम बाणासुर के पुत्री बनोगे और कृष्ण के लीला में तुमको एक मौका मिलेगा, अनिरुद्ध के साथ जो कृष्ण के पौत्र है उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा, ऐसे उनको तिलोत्तमा को वरदान दिया ऐसे उन्होंने। इस तरह साहसिक बना गदा किधर, तालवन में। और इस तरह कृष्ण बलराम सब गोपाल उस तालवन में जब प्रवेश करते हैं तो करेक्ट, वो तालवन में ऐसे बताया जा रहा है कि उधर कोई भी पंछी भी उधर उड़ता नहीं था ऊपर, सब डरते थे उधर। उस वन में रहने वाले सांप पक्षियां खाली कर दिया इसके डर से है। ये क्योंकि धेनुकासुर ने ऐसे किया था कि इधर कोई भी एक भी फल खा नहीं सकता इधर, ऐसे उसका विधि था ऐसे। तो इसके कारण पहले गोप उधर प्रवेश कर भी करते नहीं थे, उधर कृष्ण ने भी प्रवेश नहीं किया था, सिर्फ अभी बलराम ने पहले प्रवेश किया उधर। तो प्रवेश करके बलराम क्या रंग का कपड़े पहनते हैं, नीले रंग का पहनते हैं, और कृष्ण पीताम्बर सुनहरा रंग का पहनते हैं। दोनों प्रवेश किए गोपों के साथ। तो तब बलराम ने पहला पहला प्रवेश करते ही क्या किया मालूम है आपको, वो पेड़ को पकड़ कर ऐसे हिलाने लगे। जब हिलाते समय आवाज आता है ना, पेड़ की हिलाने की आवाज धड़ 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 ऐसे, उसको सुनते ही धेनुकासुर बहुत उत्तेजित हो गया। कौन है मेरे टेरिटरी के अंदर आ गया, कौन पेड़ को हिला रहा है। तो तेजी से भागते हुए आया, देखा बलराम जी हिला रहे हैं अनेक गोपाल के साथ में, बहुत उत्तेजित हो गया। देखिए धेनुकासुर जो असुर है वो क्या संबोधित करता है, स्वामी भाव को। क्योंकि कंस ने इसको उस जंगल का स्वामी बनाया था, बोला कि तुम उसको सुरक्षित रखो, फल को सब तोड़कर मुझे बेच देना, ऐसे बोला था कंस ने। बड़े बड़े गोणी में कंस को बेच देता था वो। तो ये कंस को जो सेवा देता था ये जो धेनुकासुर, वो क्या संबोधित करता है, इस दुनिया में भी लोग अपने देहात्म बुद्धि में एकदम रचे पचे रहते हैं, और देहात्म बुद्धि से उनके साथ जो जो जुड़े हैं, जैसे इस दुनियादारी लोगों को ही वो काम करते हैं, कसरत करते हैं, पसीना छूटते हैं। जैसे यस्यात्म बुद्धिर कुणपे त्रिधातु के स्वदी कलत्रादि शुभम इज्जति यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न कर्षिचित जनेश अभिज्ञेश सयेव गोकरह, बोला गया। अपने आप को शरीर से पहचानना और शरीर से संबंधित सारे दुनिया के नाता रिश्ता इत्यादि से पहचानना, अपने कामकाज से पहचानना और दुनिया के इंद्र तृप्ति से पहचानना, तो यही ये जो भौतिक पहचान जो है इसके कारण ये किसकी सेवा दे देता है, कंस को बेच देता था सब फल को, कंस को ही अपना माना इसने, ये धेनुकासुर ने ऐसे। और इधर कृष्ण बलराम आ रहे हैं जो असली स्वामी है उसका, उस वन का है कि नहीं है, तो असली स्वामी को देख नहीं पा रहा है अंधा होकर, इसलिए उसको गदा बोला गया। गदा जो होता है उसको बारावाही बोलते हैं, बारावाही का मतलब क्या है, गदा जो है अपने पीठ के ऊपर बासमती चावल का गोणी लेकर जाता है, लेकिन खुद एक मुष्टी भी नहीं मिलता उसको खाने के लिए, ये गदा है। इस तरह पूरे जंगल को सुरक्षित रखा है कंस के लिए, खुद को खाने के लिए एक फल भी खाता नहीं था वो, ऐसे कितना बड़ा मूर्ख है वो। इस तरह जो असली स्वामी है कृष्ण बलराम, वो आ रहे हैं, वो हिला रहे हैं पेड़ फल गोपों को देने के लिए, तो ये सोच रहा है कि ये कौन आ गया। इस तरह से जब हमारे गुरु हमारे भौतिक व्यक्तिमत्व को हिलाते हैं तब हम लोग विचलित हो जाते हैं। जैसे एक बार मैं युवकों का कैंप दे रहा था, तब मैंने बताया कि हम जो देश प्रेम करके बोलते हैं, अभी भारत का देश प्रेम बोलते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद कोई हो सकता है कि वो पड़ोस के देश में उसका जन्म होता है, अगर कोई पड़ोस के देश को घृणा करता है तो उसका जन्म उधर भी हो सकता है, उसको घृणा करते करते उसका ही रूप मिल जाएगा, दाढ़ी मिल जाएगा, टोपी मिल जाएगा, हो सकता है ऐसे, ऐसे बोला मैंने। क्योंकि आत्मा शरीर बदलता है ना, इसलिए हम वसुधा एव कुटुंबकम, सारे दुनिया के सब जीवों को भगवान के बच्चे मानना चाहिए। ऐसा नहीं, पहले हम लोग सोचते मेरा परिवार ही सब कुछ है, उसके बाद सोचते हैं मेरे जाति वाले ही सब कुछ है, उसके बाद कोई सोचता है कि मेरे देश मेरे प्रदेश वाले ही सब कुछ है, जैसे जय तमिलनाडु, जय केरला, जय आंध्रा, जय कर्नाटका, जय महाराष्ट्र, लोग बोलते हैं ना ऐसे, उसके बाद बोलते हैं मेरा भारत महान बोलते हैं। लेकिन हमारे चेतना को विस्तारित करना चाहिए उससे भी ज्यादा, सारे दुनिया के जीव भगवान के बच्चे हैं, भगवान बोलते हैं हम बीज, वो सही चेतना है वसुधा एव कुटुंबकम। मैंने उनको बोला, वो क्लास होने के बाद एक लड़का है मुझे, भाजी आपने पूरा हिला दिया हमारे दिमाग को, ऐसे हिला दिया अभी तक हमने सोचा ही नहीं था, हम पूरे हमारे समय देते थे सिर्फ, हम सोच रहे थे कि हमारा जाति वाले, हमारे देश वाले, ऐसे हम सोचते थे। हमें पूरा हिला दिया। मैंने अभी दबी उनको देने का असुर का कारण बोला उनको, जैसे बलराम जी ने हिला दिया ना उनके वो पेड़ को हिला दिया। इस तरह हमारे जो गलत पहचान है इस भौतिक पदार्थों के साथ उसको हिला देते हैं। जैसे एक बार दो मोटे मोटे माता जी आई थी, एकदम बहुत ओबेसिटी बोलते हैं ना मोटे ऐसे, तो एक कार्यक्रम अटेंड करने के लिए आई थी। परम पूज्य जयदूत महाराज लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर में महाराज ने बोला कि तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो। तो वो सुनकर इतना आनंदित हो गई। प्रवचन होने के बाद महाराज को दोनों आई मिलने के लिए, बोले कि महाराज जी आपने पूरा हिला दिया हमारे गलत समझावट को। महाराज बोला क्या हुआ क्या हुआ, कौन हिला सकता आपको, आप तो इतने बड़े मोटे हो। तो वो लोग बोले अभी तक हम सोच रहे थे कि हम शरीर हैं, आपने क्या बोला? आत्मा बोल दिया। पा हमको बहुत रिलीफ हो गया। हमको क्यों रिलीफ? क्योंकि मृत्यु के बाद हमको एक पतला शरीर मिल सकता है दूसरा है? तो ये शरीर निकल जाएगा। ये निकलने वाले पदार्थ है, आपने समझा दिया कि ये मर मिटने वाली चीज है। तो अनेक लोगों को ये भी बात मालूम नहीं है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, जानते नहीं। इसलिए शरीर के लिए ही काम करते हैं। कितने तरह तरह के शैंपू लगाते हैं, कितने हेयर स्टाइल है, कितने तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, कितने बेल्ट है, कितने शू है, कितने वॉचेस हैं, शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते लोग, कितने लोशंस हैं, कितने पाउडर लगाते हैं। तो जब तक शारीरिक चेतना ही देने का असुर का चेतना है ये। जब हम शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं, समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, तब हम सही चेतना पर पहुंचते हैं। तो जब गुरु कभी कभी सिखा देता है भक्तों को कि जीवर स्वरूप हो, इसको सुनकर लड़का हो लड़की हो वृद्ध हो कोई भी हो, तुरंत उनके माला लेकर वो लोग नाम जपना चालू कर देते हैं, तिलक पहनते हैं। तो कभी कभी घर वाले बहुत कुपित हो जाते हैं, अरे इतना क्या गंभीर बन गया तुम भक्ति में, अभी तो तुम्हारा उम्र क्या है, अभी ये उम्र है सिगरेट फूंकना, शराब पीना, सिनेमा देखना है। तो कभी कभी पिताजी लोग भी बोलते हैं ये सब कर सकते हो, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो बेटा है, मैं सिखा दूंगा तुमको शराब कैसे पीने का है, ऐसे पिताजी बोलते हैं बच्चों को। वो देखते हैं कि लड़का माला लेकर घुमा रहा है, नाम ले रहा है, भक्ति में जुड़ रहा है। तो देहात्म बुद्धि में जो लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं जब कोई भक्ति में उनके जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो उनका स्वामी बा होता है। वो क्या सोचते हैं, हम तो शरीर हैं, अपने शरीर से पहचानते हैं, अहंकार होता है उनका है। और उसके कारण क्या होता है, ये घर मेरा है, ये काम धंधा मेरा है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा जाति पाति है, जाति है मेरा जाति है, इस तरह के वो लोग इसमें इतना डूबे रहते हैं, इतना डूबे रहते हैं। एक घर में मैं गया था, जैसे उनका सरनेम होता मालूम है, घरों में आप देखेंगे वो लोगों का ये, जैसे अभी पाटिल उदाहरण के लिए बोलता हूँ, एम के पाटिल, बे के पाटिल, आर के पाटिल, यू के पाटिल, ऐसे अलग अलग पाटिल होते हैं उनके यहाँ। तो वो उनको टाइटल्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, सरनेम टाइटल करेक्ट है ना। तो हम लोग जैसे कुछ लोगों का नाम है प्रभु, नहीं तो महाजन, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सिर्फ नाम मात्र है। आजकल आप पूछेंगे चार वेदों का नाम बोलो, नाम भी मालूम नहीं ऐसे। तो हाँ ऐसे लोग हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, तो कभी कभी हम लोग अपने जाति से इतना पहचानते हैं। तो ये देन का असुर का चेतना है, ये इसको बोलते हैं बारवाही है, इट्स अ ग्रॉस कॉन्शियसनेस ऐसे। इसलिए जब गुरु बलराम जी कौन है, आदि गुरु हैं, आदि गुरु आकर क्या करते हैं, हिला देते हैं हमारे भौतिक पहचान को, हिलाकर बोल देते हैं कि अरे तुम पुरुष नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम सिर्फ भगवान का दास हो, बस जीवर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, सब अहंकार को छोड़ दो। और अगर जैसे प्रभुपाद जी फोर्ड, हेनरी फोर्ड के बेटे से मिले ना, तब उन्होंने उनको पूछा, सॉरी उनके पौत्र उनका हेनरी फोर्ड ना, करेक्ट है। तो उनको जब पूछा वेयर इज फोर्ड, ऐसे पूछा उनको, वो किधर गए, अभी इतने बड़े धनी थे, फोर्ड कंपनी चालू किया, इतने कार बेचकर इतने धनी खानदान में जन्मे हो, वो किधर हैं? तो प्रभुपाद जी ये बोलना चाहते थे कि सब लोग इस दुनिया में आते हैं, धन दौलत कमाते हैं, कुछ समय के लिए चमकते हैं, निकल जाते हैं, है? ऐसे के कितने कितने स्पोर्ट्समैन हैं। मैं जब कॉलेज में आता तब गवास्कर सबसे बड़ा हीरो था, हाँ, सुनील गवास्कर, हाँ। अभी उसके बाद वो क्या बना, अंपायर बना, कमेंटेटर बना, हाँ कमेंटेटर बना। उसके बाद अभी भी करते हैं, कमेंट करते हैं, अभी कभी कभी करते हैं, हाँ। अभी ऐसा है तो समय काल बदल जाता है ना, लोग आते हैं कुछ समय के लिए चमकते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं एक एक करके। दुनिया ऐसा ही है, ये सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस भी ऐसे हैं, हम तरुण अवस्था में आते हैं, बहुत कुछ ड्रामा करते हैं, उसके बाद बाल पक जाता है, निकल जाते हैं, इस तरह। इसलिए हमें देहात्म बुद्धि को छोड़ देना चाहिए हमको, हाँ, नहीं तो देहात्म बुद्धि में हम पड़े रहेंगे, मोहित होकर इस दुनिया में पाप को अर्जित करेंगे, भगवान को भूल जाएंगे, इस दुनिया में आसक्त हो जाएंगे, और अचानक एक दिन मृत्यु आएगा, पता नहीं इसको क्या शरीर मिलेगा इसको, हाँ। इसलिए हम देहात्म बुद्धि को इधर संबोधित किया गया है ये धेनुकासुर से, हाँ। क्योंकि जब बलराम जी हिला रहे थे वो एकदम कुपित हो गया, धेनु का भागते हुए आया, हाँ। तो ऐसे भागते हुए आकर आप देखेंगे, हाँ। आगे आगे और एक, हाँ अभी देखिए अपने पीछे के पांव से जोर से फट 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 करके मारने लगा बलराम के वक्षस्थल में, छाती में। देखिए इसलिए गधे को मूर्ख बोलते हैं, क्योंकि अगर पीछे का पांव दिखाओगे तो पकड़ा जाएगा ना, अगर सामने से मारोगे तो पकड़ना भी कठिन है, लेकिन मुड़कर पीछे से मारता वो, तो बलराम ने दोनों पांव को पकड़कर उसको गोल गोल घुमाकर ऊपर एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। देखिए बलराम जी को क्यों बोला कृष्ण ने इस तरह करने के लिए, उसका कारण भी है, क्योंकि भगवान ने ऐसे कुछ वरदान दिया था बलि महाराज को, तुम्हारे वंश में किसी को मैं खुद नहीं मारूंगा, ऐसे। इसलिए भगवान ने बोला बलराम को, मैंने एक वचन दिया है बलि को, इसलिए मैं नहीं मारूंगा, तुम मारो, हाँ, उनका मारने के लिए बोला। उसके बाद धेनुकासुर के अनेक बाकी गधे भागते हुए आए, और रंग बिरंगे गधे, अलग अलग रंग के, तब कृष्ण और कृष्ण ने भी उनको उठाया और खुद भी गोल 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 घुमाकर उनको फेंक दिया पेड़ों के ऊपर, हाँ। ऐसे अनेक आते हैं ना, हाँ, तो रंग विविध रंग के हैं इस तरह। तो सब मर कर पेड़ों के ऊपर जब गिर पड़े तब सुंदर जैसे रंग बिरंगे बादल जैसे दिख रहे थे वो, ऐसे प्रपंच बताते हैं। तो इधर इस अनर्थ जो है देनुकासुर से समझने लायक अनर्थ बहुत कुछ हमारे आचार्य ने लिखा, मैं एक एक करके हम इसके बारे में थोड़ा सुनेंगे। अभी एक चीज तो मैंने बता दिया देहात्म बुद्धि के बारे में, इधर और बताते हैं, ये गो है नेक्स्ट आगे, और आगे, हाँ इधर रुकना, पढ़िए।
धेनुकासुर हमारे भौतिकवादी तर्क बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव को दर्शाता है।
देखिए तर्क वितर्क करना, कुतर्क करना, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कोई कुतर्क करके आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में अनेक तार्किक लोग कुतर्क करके इधर ही फंस जाते हैं। जैसे एक श्लोक है महाभारत में, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न ना सवृषेर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायम महाजनो ये न कतः सप्पंत। तो इस श्लोक में बताया गया कि महाजनों की अनुगामी बनकर हम सत्य को समझेंगे, तर्क वितर्क से हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे कुछ लोग भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, छह तरह के भौतिकवादी लोग हैं, एक भौतिकवादी है उसको भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं और नैतिक जीवन के ऊपर भी विश्वास नहीं उसको, ये सबसे नीच। और उससे बढ़कर कुछ लोग होते हैं भौतिकवादी, जो नैतिकता को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि नैतिक जीवन जीना चाहिए, हम धर्म भी इसलिए रखा है कि हम लोग नैतिक जीवन जिए, ऐसे वो लोग बोलते हैं, भगवान को परवाह नहीं करते। और तीसरे श्रेणी के लोग होते हैं, भगवान को भी मानते हैं, नैतिक जीवन को भी मानते हैं, लेकिन नैतिक जीवन को भगवान से भी ज्यादा महत्व देते हैं, हाँ। वो लोगों का सोचना ऐसे होता है कि भगवान की भक्ति ठीक है, लेकिन उसे जैसे एक बार किसी ने गांधी को पूछा कि गांधी तो पूजा करते थे किसकी, रामचंद्र जी की, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत अच्छा लगा उनको, क्यों, मर्यादा पुरुषोत्तम उनके बॉक्स के अंदर फिट होते हैं, अच्छा उनके नैतिक बॉक्स के अंदर फिट होते हैं, अच्छा। लेकिन किसी ने पूछा कि देखो कृष्ण माखन की चोरी करते हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं, आपका क्या बोलना है, तो बोले नहीं नहीं भगवान इस तरह कर नहीं सकते, भगवान तो एक पत्नी व्रत लिया है रामचंद्र जी ने, ऐसे बोला उन्होंने। लेकिन कृष्ण भी राम और एक ही है, कृष्ण राम विष्णु सब पुरुषोत्तम है, क्यों किया, तो गांधी बोल नहीं पाए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अगर ये सब सत्य हो तो मुझे बहुत शर्म आता है ये बोलने के लिए कि मैं हिंदू हूँ, ऐसे उन्होंने एक बार बोला। तो प्रभा जी कोट करते हैं, क्योंकि गांधी एक वैष्णव सदगुरु की आश्रय लेकर इन विषयों को सही ढंग से उनको समझना था, क्योंकि कृष्ण के साथ जो गोपियां नाच रही थी, आप पढ़ेंगे 10.29.9 भागवत में, उधर दिया गया कि ये श्रुतिचारी गोपियां, ऋषिचारी गोपियां, देवकन्या गोपियां, इसमें से कोई भी साधारण मनुष्य नहीं है, सब बड़े बड़े पहुंचे हुए आत्मा है। जो दंडकारण्य जंगल में जो ऋषि बनकर प्रभु रामचंद्र जी के शुद्ध भक्त थे, वो कृष्ण लीला में आकर गोपियां बनी है, और श्रुतियां गोपियां बनकर आती आती है, नाचती हैं। जब गोपियां नाच रही थी अष्ट सात्विक विकार में, उनकी आंखों से आंसू बह रहा था, रोम कड़ा हो रहा था, और नाच रही थी प्रेमावेश में आकर, उनके प्रेम में लेश मात्र भी काम नहीं है। जो लोग इसको नहीं समझते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये अनैतिक काम कर रहे हैं भगवान, ऐसे वो सोच रहे हैं मूर्खता से। ये भागवत के अंदर एक श्लोक है जो बताया कि गोपियों के शरीर घर में ही लेटा था अपने माता पिता के साथ, माता पिता ने देखा उनके शरीर को, लेकिन उनकी आत्मा निकल गया शरीर से, जाकर कृष्ण के साथ नाच रहा था, ऐसे बताया गया। इसलिए रास नृत्य जो है वो आत्माओं का नाच है भगवान के साथ, तो ये शुद्ध दिव्य नाच है। इसमें बड़े बड़े देवता जैसे शिव जी भी भाग लेना चाहते हैं गोपेश्वर महादेव बनकर, ऐसे नारद भी भाग लेना चाहते हैं नारदी गोपी बनकर, ऐसे लक्ष्मी जी भी इसमें प्रवेश करना चाहती है, इसलिए वो तपस्या कर रही है वृंदावन में, वो सोचते हैं लक्ष्मी वैकुंठ में मेरे प्रभु नारायण एकदम शांति से बैठे हैं, लेकिन इधर इधर के नाच रहे हैं भगवान, मेरे ही नारायण अभी कृष्ण के रूप में है, तो वो भी भाग लेना चाहती है उसमें। आप देखेंगे इस तरह कृष्ण के दिव्य लीला को जो लोग समझ नहीं पाए, वो लोग सोच रहे थे कि तो ये ऐसे भगवान को हम नहीं स्वीकारेंगे, इसका मतलब क्या है, उनकी नैतिकता को वो भगवान से भी ज्यादा ऊपर डाला। तो भगवान की नैतिकता सूर्य के बराबर है, सूर्य के सामने हम एक मोमबत्ती को जलाकर सूर्य को ढूंढ नहीं सकते, और भगवान कभी आधार में खो नहीं सकते भगवान कभी, भगवान तो सूर्य के समान उनकी चरित्र प्रज्वलित है। इसलिए धर्मध्वजी लोग भी हैं, निर्विशेषवादी लोग हैं, सब लोग लोगों को भौतिकवादी के श्रेणी में रखा गया है, तो वो भी प्रलंबासुर ही उनको संबोधित करते हैं, ये देनुकासुर। देखिए प्रलंबासुर देनुकासुर इन दोनों को किसने मारा, बलराम जी को मारने के लिए बोला भगवान ने, तो प्रलंबासुर संबोधित करता है रजोगुण को जो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, और देनुकासुर संबोधित करता है तमोगुण को, तमोगुण के कारण अविद्या अज्ञानता में पढ़ाता वो। इसे बताते हैं कि धेनुकासुर इंडिकेट्स इग्नोरेंस ऑफ वंस स्वरूप एन आइडेंटिटी ऑफ हरिनाम एन आइडेंटिटी ऑफ कृष्ण, इसको बोलते हैं तत्व विभ्रम, स्वतत्व विभ्रम, परतत्व विभ्रम, साधन साध्य विभ्रम, इसका मतलब है सही ढंग से ना जानना कि आत्मा क्या चीज होता है, भगवान कौन है, संबंध क्या है, ये सब ना जानकर शरीर से पहचानना, वही बताते हैं। तो पहला चीज बताते हैं कि हमें नम्रता होना चाहिए, धेनुकासुर के अंदर नम्रता नहीं है, इसके विरुद्ध वो गुरु को ही अपने पीछे के पांव से मार रहा है, उनको धक्का दे रहा है। इस तरह कभी कभी क्या होता है, अगर ये एक शिष्य अपने गुरु के चास्टाइसमेंट, जो गुरु कभी कभी उसको डांटते हैं उसको सुधारने के लिए, उसको सही ढंग से समझता नहीं, गुरु को ही वो कोसता है, गुरु को ही डांटता है, बोलते हैं कि गुरु क्या समझता है मुझे, मेरे बारे में मालूम नहीं गुरु को, मैं महान हूँ, ऐसे बोलता है मूर्खता से। इस तरह हमें गुरु के साथ हमें घृणा नहीं करना चाहिए, अगर गुरु हमारे माता पिता जैसे हैं, ये ऐसे बताया है कि इंग्लिश में अगर डोंट बाइट द हैंड्स विच सर्व यू, अगर कोई हाथ से आपको खिला रहे हैं आप खा रहे हो, खाने के बाद उनके हाथ को ही काटो अपने दांत से, इस तरह गुरु जो है तुमको बचा रहे हैं संसार से, ऊपर उठा रहे हैं। कभी कभी तुमको डांटना पड़ेगा, गुरु आपको डांटेंगे आपके भलाई के लिए। तो हमारे तमोगुण के कारण हम गुरु को भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए, उनको हमारे दुश्मन नहीं मानना चाहिए मूर्खता से। इस तरह गुरु हमारे भौतिक बुद्धि जो है तमो बुद्धि उसको निकालने वाले होते हैं, इसलिए उनके उनको दुश्मन नहीं मानना चाहिए, वो बता रहे हैं। और एक चीज बताया गया है कि ये जो धेनुकासुर का मतलब क्या है, कुछ लोग धार्मिक सिद्धांतों को ऊपर ही ऊपर करते हैं लेकिन उसके गहरा उसका मूल उद्देश्य क्या समझते नहीं। उदाहरण के लिए एक आता था अपने गुरु को मिलने के लिए, एक व्यक्ति गुरु जब आते थे पुणे में बड़ा गार्लैंड लेकर आता था, पहनाता था गुरु को, दंडवत करके निकल जाता था, लेकिन गुरु 6 महीने के बाद आते तब आता था वो। तो गुरु ने उनको बोला, देखो तुम मेरे शिष्य हो इसलिए मैं तुमको करेक्शन देना चाहता हूँ, तुमको तुम इतना बड़ा हार पहनाते हो, मैं इससे कुछ नहीं हूँ, लेकिन हर संडे तुम मंदिर आओगे, भगवान का दर्शन करोगे, कथा श्रवण करोगे, मुझे हार भी नहीं पहनाओगे फिर भी मैं तुमसे खुश होऊंगा। क्योंकि ये जो है रीति रिवाज ऊपर ही ऊपर तुम पालन करते हो मुझे खुश करने के लिए, लेकिन मैं असली रूप में मैं क्या खुश देगा, मुझे खुश करेगा, तुम शरणागत होकर भक्ति में आगे बढ़ोगे उससे मैं खुश होऊंगा, ठीक है ना। इस तरह सूक्ष्म तत्वों को ना समझ कर स्थूल रूप से धर्म को पालन करना, ये भी देने का असर है। कुछ कुछ लोग धर्म को ऊपर ही ऊपर फॉलो करते हैं, जैसे चित्रकेतु था, उसने अंगिरमणि को बुलाया, बड़े आसन में बिठा दिया, खुद नीचे बैठ गया, ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे नम्र भावना से बैठा, उनके पांव धोया और सर झुका सब किया, लेकिन उनकी बात नहीं माना। वो बोल रहे हैं कि अरे आत्मा के बारे में बोलूंगा, उसको सुनना नहीं अभी, बोलता नहीं हमको बेटा चाहिए, वो पहले हमको जब पुत्र मिलेगा सब तब हम शांत होंगे। उसका मतलब क्या है, वो ऊपर रीति रिवाज चल रहा है लेकिन जो सार है वो पकड़ नहीं पा रहा है, वो भी ऐसे वो भी बताया गया है ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी आगे दिखा दीजिए, रिचुअल वर्सेस स्पिरिचुअल ना, वो बहुत लिखा है इधर, वो बोल दिया मैंने, आगे बस हो गया ना। हाँ, तो हम सही टाइम पर दोनों पूरा कर दिया हमने, ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा की प्रार्थनाएं और ब्रह्मा जी की माफी, ब्रह्मा ने माफी मांगा भगवान को। आप देखेंगे इसलिए ब्रह्मा ने क्या बोला कृष्ण को, मैं वृंदावन में एक पहाड़ बनना चाहता हूँ, मेरे चार सर जो है ना उसको चार पहाड़ बना बनकर मेरे पहाड़ के मेरे सर के ऊपर सब वृंदावन के वासियां चढ़े, उनकी पद धूली मेरे सर के ऊपर पड़े। हाँ, इस तरह है उन्होंने विनती किया कृष्ण को, इसलिए आप बरसाना जाएंगे उधर मानगढ़ बानगढ़ दानगढ़ विलासगढ़, ऐसे चार गढ़ हैं, वो ब्रह्मा के ही सर हैं। तो ब्रह्मा जी उधर ब्रजवासियों की धूली पाकर नम्र बनने के लिए ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो हम लोगों को भी ब्रजवासियों की धूली हमने अपने सर में लेना चाहिए और ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए कैसे नम्र बनना चाहिए, ऐसे नम्र प्रार्थनाएं करना चाहिए। और धेनुकासुर से सीखना चाहिए कि देहात्म बुद्धि को छोड़ दो। कृष्ण भगवान की, कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, कंतराज श्रीमद भागवतम की, शिल्प उपाद की, गौर भक्त वृंद की। थैंक यू। हरे कृष्ण।